नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही प्रासंगिक उद्बोधन पर बात करने वाले हैं, पारिवारिक जीवन में कर्मयोग।
जी, ये कैसा विषय है जो हम सबके जीवन से जुड़ा है, घर परिवार में रहते हुए कैसे कर्मयोगी बना जाए।
हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ जीवन के लिए कर्मयोग के क्या सूत्र दिए हैं, मतलब ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं।
बिल्कुल, ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, बल्कि ठोस करने वाली चीजें हैं।
तो शुरुआत करते हैं पहली बात से। गुरुदेव कहते हैं कि भाई, सिर्फ सोचना या एहसास करना काफी नहीं है, कर्म करना पड़ेगा, एक्शन।
हाँ, ये नींव है। जैसे गीता भी तो कर्मयोग पर ही जोर देती है ना, जानना, मानना और फिर उसे जीवन में उतारना, मतलब कर्म करना। इसके बिना ज्ञान अधूरा है, भावना अधूरी है।
सही कहा। तो फिर कर्म को सही दिशा कैसे दें, यहीं पर शायद उपासना या साधना की बात आती है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव नियमित साधना पर, उपासना पर बहुत बल देते थे।
हाँ हाँ,
जैसे रोज दमा खाते हैं,
हाँ,
या कसरत करते हैं, वैसी रोज कम से कम आधा घंटा उपासना, जिसे वो प्रज्ञा योग कहते थे,
हाँ,
जरूर करें, सोने से पहले या कोई भी एक समय पक्का कर लें।
लेकिन ये उपासना किस लिए? क्या इच्छा पूर्ति के लिए?
नहीं नहीं, यही तो महत्वपूर्ण बात है। गुरुदेव बहुत स्पष्ट थे कि उपासना का लक्ष्य है आत्म परिष्कार, अपने गुण कर्म स्वभाव को सुधारना। कामनाओं के लिए या चमत्कार देखने के लिए की गई उपासना को तो वो बहुत निम्न स्तर का मानते थे।
अच्छा, मतलब फोकस अंदर की ओर हो, बाहर की चीजों पर नहीं।
एकदम सही, आत्म सुधार।
इसके साथ ही गुरुदेव आलस्य और प्रमाद, इन दो शब्दों का जिक्र करते हैं। आलस्य तो हुआ शारीरिक सुस्ती।
हाँ, और प्रमाद, प्रमाद मतलब किसी काम को बेमन से करना, ध्यान लगाकर न करना, लापरवाही।
और गुरुदेव तो इसे बहुत गंभीर मानते थे, लगभग आत्महत्या जैसा अपराध। ये सुनकर तो मैं भी चौंक गई थी।
जी, शब्द थोड़े कठोर लग सकते हैं, पर भाव गहरा है। वो कहते थे कि ईश्वर ने हमें ये जो समय, ये जो ऊर्जा, ये जो क्षमताएं दी हैं, उन्हें व्यर्थ गंवाना अपने आप को ही नष्ट करने जैसा है। तो हमें कर्मयोगी बनना है, मतलब मेहनती, जिम्मेदार और अपने काम में पूरी तरह से समर्पित।
सही बात है। अब आते हैं परिवार पर, जो कि इस चर्चा का केंद्र है। यहाँ गुरुदेव का एक बड़ा अनूठा विचार है, परिवार का मुखिया मालिक नहीं, माली है।
हाँ, ये बहुत सुंदर उपमा है। माली क्या करता है?
देखभाल करता है, पानी देता है, काट छांट करता है।
बिल्कुल, वो पौधों पर हक नहीं जताता, उन्हें पालता पोसता है, बढ़ने में मदद करता है, नियंत्रण नहीं, पोषण। तो परिवार के मुखिया का रोल यही है, सबको स्वावलंबी बनाना, संस्कारवान बनाना।
अच्छा, और इसी माली भाव से परिवार के लिए वो पंचशील की बात करते हैं, पांच सिद्धांत।
जी, पहला है श्रमशीलता, घर में हर कोई मेहनती हो, कोई आलसी ना हो।
दूसरा
है सुव्यवस्था, घर साफ सुथरा हो, चीजें जगह पर हो, समय का पालन हो, एक नज्म हो जीवन में।
तीसरा
है शालीनता या सज्जनता, मतलब व्यवहार में विनम्रता, मिठास, यहाँ तक कि जिनसे मतभेद हो उनसे भी शराफत से पेश आना।
ये मुश्किल है पर जरूरी है। चौथा
है मितव्ययिता, मतलब फिजूल खर्ची से बचना, साजिश है रहना, पैसे का सही उपयोग करना।
और पांचवा
है उदार सहकारिता, एक दूसरे की मदद करना, सेवा करना, प्रेम भाव रखना, परिवार एक टीम की तरह काम करे।
ये पांचों बातें, श्रमशीलता, सुव्यवस्था, शालीनता, मितव्ययता और सहकारिता, ये तो किसी भी अच्छे समाज की नींव है।
बिल्कुल, और परिवार ही तो समाज की पहली इकाई है, यहीं से शुरुआत होती है।
इसके अलावा गुरुदेव स्वाध्याय पर भी बहुत जोर देते थे, अच्छी किताबें पढ़ना।
हाँ, उसे वो आज के जमाने का सत्संग कहते थे। घर बैठे ही आप महापुरुषों, ऋषियों के विचारों से जुड़ सकते हैं, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है।
और इन सबके मूल में सबसे गहरी बात जो गुरुदेव कहते हैं वो क्या है?
वह आत्मबोध, ये समझना कि मैं ये शरीर मात्र नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये एहसास जैसे जैसे गहरा होता है ना,
तो क्या होता है,
तो जीवन का फोकस बदल जाता है। फिर इंसान सिर्फ खाने पीने, पहनने ओढ़ने या शरीर के सुखों के पीछे नहीं भागता, उसका ध्यान आत्म कल्याण, दूसरों की भलाई, समाज सेवा, इन चीजों की तरफ मुड़ जाता है।
अच्छा, तो ये आत्मबोध ही कर्मयोग का आधार है एक तरह से।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आप खुद को आत्मा समझते हैं तो फिर मोह कम होता है, सांसारिक चीजों से डिटैचमेंट आता है।
और शायद इसीलिए फिर उस समयदान और अंशदान की बात करते हैं।
एकदम सही पकड़ा आपने। जब आत्मबोध होता है तो लगता है कि ये शरीर, ये साधन, ये सब समाज के लिए भी हैं। तो फिर अपने समय का कुछ हिस्सा, जिसे वो समयदान कहते थे, और अपनी कमाई का कुछ अंश, जिसे अंशदान कहते थे, वो समाज के अच्छे कामों के लिए निकालना आसान हो जाता है।
और इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए, है ना?
जी हाँ, ये सिर्फ दान नहीं है, ये एक यज्ञ है। समाज यज्ञ में अपनी आहुति देना, ये कर्मयोग का बहुत ही व्यवहारिक रूप है। अपने निजी जीवन के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, पूज्य गुरुदेव के अनुसार पारिवारिक जीवन में कर्मयोग का मतलब हुआ नियमित उपासना, आत्म सुधार के लिए आलस्य प्रमाद का त्याग, परिवार में पंचशील का पालन, स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ाना और सबसे जरूरी स्वयं को आत्मा समझना।
और इसी आत्मबोध से प्रेरित होकर समाज के लिए समय और साधनों का योगदान देना।
हाँ, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि सुखी, व्यवस्थित और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का तरीका है।
बिल्कुल, इससे व्यक्तिगत जीवन भी सुधरता है और पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी। जीवन सार्थक बनता है।
जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, गुरुदेव का ये कहना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, सुनने में तो एक वाक्य है, पर अगर हम आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में इस एक विचार को सच में गहराई से अपने अंदर उतार लें, तो हमारे रोज के फैसलों पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी जिम्मेदारियों को देखने के नजरिए पर इसका क्या असर पड़ेगा? जरा सोचिएगा इस पर।